Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऐसे ही एक ही तत्व जब अभिव्यक्त होता है तो वो अनेकताओं में बदल जाता है। वो अनेकता किसी भी तरह से पृथकता नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, सेपरेट नहीं, वो इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट। संसार की सभी चीजें, पानी के बिना हवा नहीं है, हवा के बिना मिट्टी नहीं है, मिट्टी के बिना अग्नि, आकाश, ये इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि एक भी अगर बीच में से निकल जाए तो सारा काम खत्म हो जाएगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे में अनुसूत भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी कर रहे हैं, और इन्हीं से ही आगे सारा। ये एक ही तत्व से पहले तो जब अहम से महतत्व से अहम, अहम से पंच मात्राएं, फिर ये पंचभूत, पंचभूतों से हम सब, तो ये एक ही का विस्तार। बात केवल इतनी ही ध्यान में रखनी है कि विविधता ईश्वर का गुण है और पृथकता में विविधता को बदल देना माया का काम है, उसको माया कहते हैं। भगवान ने साथ में अपनी एक ऐसी शक्ति जो सत्य को ठीक तरह से न समझने दे उसको माया कहते हैं। माया क्या करती है? माया वो काम करती है कि है तो पृथकता लेकिन है तो विभिन्नता, लेकिन विभिन्नता को पृथकता में बदल देती, कि ये एक दूसरे के विरोधी है। तो ये जो यहां पर सारे जितने भी उपद्रव हैं वो शुरू हो जाते। देखो, आप कितना भी ये कहो कि सारे संसार के लोग एक ही हैं, आज तक सब महापुरुषों ने ये कहा, सब ने ये बातें की कि ये संसार के सब लोग एक ही हैं, सब भाई भाई हैं, कोई किसी से वो नहीं, लेकिन आज तक ये एकता हो नहीं पाई। या हम कहते हैं सबको कि सब भाइयों की तरह रहो, तो भाइयों की तरह क्यों रहे जब तक आप ये सिद्धांत नहीं बतलाओगे कि भाइयों की तरह रहना नहीं, आप हैं ही मूलतः एक, एक ही आप हो ही एक। अभिव्यक्तियां इसमें विभिन्नता है, एक ही तत्व की विभिन्नता है, आप अलग नहीं हो। खिलौनों को ये बतला दिया जाए, एक शेर बना हुआ है मिट्टी का और एक बंदर बना हुआ है मिट्टी का और एक घोड़ा बना हुआ है मिट्टी का और एक चूहा बना हुआ है मिट्टी का, एक बिल्ली बनी हुई है मिट्टी। अब चूहा उससे डरता रहे, वो उससे डरता रहे, हम उपदेश करते रहे भाई बहनों की तरह रहो, वो नहीं रहे। अगर ये समझ में आ जाए कि मिट्टी के योगे स्वयं पता लग जाए, चूहे को भी लगे कि मैं मिट्टी का हूं, बिल्ली को लगे मैं भी मिट्टी का, तो दोनों मिट्टी के हैं, तो फिर खाएगा कौन किसको? फिर तो अपने आप ही एकता है, फिर तो अपने आप ही स्नेह है, फिर तो अपने आप ही भ्रातृत्व है। लेकिन ये बात समझा पाना लोगों को राजनीतिज्ञ का काम नहीं है। राजनीति तो तभी चलेगी राजनीति के चूहे चूहे ही रहेंगे, बिल्लियां अपना एक एसोसिएशन बनाए क्योंकि उनका भी कोई प्रेसिडेंट होगा, चूहों का भी अपना होगा और कुत्तों का भी होगा, फिर उनकी सीटें रिजर्व होगी कि कुत्ते क्यों पीछे रह जाए, वो भी भौंकेंगे वहां जाकर, तो इसलिए अपनी अपनी सीटें रिजर्व करो, वो करो, ये करो। तो ये चलती ही रहेगी विभिन्न, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ये बात होती ही रही, और संत परंपरा के लोग आधारभूत एकता को समझाते ही रहे। और जब राजनीतिज्ञों ने समझा कि इसकी बात लोगों के समझ में आ रही है, तो उसी समय या उसे फांसी पर लटका दिया गया, या सूली पर चढ़ा दिया गया, या उसका सर काट के रख दिया गया। ये आज से नहीं, जब से धरती बनी, जब से दुनिया बसी, हम यूं ही जिंदगी को तरसते रहे। मौत की आंधियां घिर के आती रही, खून और आग के बादल बरसते रहे। हम अंधेरी गुफाओं से निकले, मगर अपने सीनों में रोशनी फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले, मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। ये ठीक है कि जहां जंगल थे वहां आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसमें रहने वाले अब भी जंगली हैं। रोज अखबार पढ़ के देखो कोई क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों। तो जंगल तो शहरों में बदले, मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। रहे जंगली के जंगली, क्यों? क्योंकि ऋषियों की बात की ओर ध्यान नहीं दिया, और अगर दिया भी तो उसको हमने अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग किया, इसके लिए नहीं किया कि सब स्नेह से रह सके या प्यार से रह सके। तो प्रज्ञान शब्द का मैं अर्थ आपसे कह रहा था, प्रज्ञान किससे ये शुरू हुआ आपका ये उपनिषद। प्रज्ञान का अर्थ होता है, ये ज्ञान नहीं है, ये संज्ञान भी नहीं है, ये विज्ञान भी नहीं। ज्ञान होता है पृथकता का, अलग अलग चीजों को जानना, ये ज्ञान है। भौतिक चीजों का विश्लेषण, उनको तोड़ तोड़ के देखना, ये विज्ञान है। एकत्व को देखना, ये संज्ञान है। और जड़ चेतन जो कुछ है वो सब के सब एक ही है, वो प्रज्ञान। प्रज्ञान का अर्थ यही है। देखो प्रज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझ के परे की बात। बुद्धि पृथकता को समझ, अलग अलग चीजें हो जब तक तब तक बुद्धि काम करती। जहां चीजें अलग अलग नहीं होगी वहां आप चक्कर खाके गिर जाओ। देखो रेलगाड़ी खड़ी हो, एक बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, तो आप बड़े आराम से डिब्बे देखोगे कि ये डिब्बे जा रहे हैं। अगर रेलगाड़ी स्पीड से चल रही हो और उस रेलगाड़ी के फर्ज करो 20-25 बहुत सुंदर सुंदर डिब्बे हो, तेज चलती हुई रेलगाड़ी पर आप अगर नजरें गड़ाओगे तो 2 सेकंड के बाद चक्कर आएगा, गिर जाओगे। चलती हुई गाड़ी को आप उस पर नजर लगाना, आप देखना किस लोक में पहुंच जाते, चक्कर आ जाएगा। क्योंकि बुद्धि विभिन्नता को पकड़ती है, वहां वो कुछ इतना मिला हुआ है वो कि समझ नहीं आई कि क्या हुआ, क्योंकि वहां पर डब्बे अलग अलग नहीं है, डब्बों में बैठे हुए लोग अलग अलग नहीं है। हालांकि है तो सारे ठीक, वही डिब्बे हैं, वही लोग हैं, वही उनमें रहने वाले, लेकिन वहां आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। जहां ये एकत्व की बात आती है, जहां भी एकता की बात आएगी वहां बुद्धि की बात नहीं होगी। वहां मन थोड़ी देर के लिए, हृदय थोड़ी देर के लिए काम करता है। प्रेम के क्षणों में एकत्व होता है, उसमें बड़ा छोटा भूल जाता है कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो थोड़ी देर के लिए उसमें हम इसकी अनुभूति करते हैं कि वहां पर बुद्धि छूटी, और बुद्धि के साथ ही साथ जो जिनको हम स्नेह आत्मिक वृत्तियां कहते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में प्रेम या प्रणय कहोगे, वो जो ही जागृत हुआ तो थोड़ा एकत्व नजर आने लगता है, महसूस करते। भले ही हमें उस समय भी आंखों में विभिन्नता नजर आती रहे, लेकिन उसमें हम कहते हैं नहीं, सब एक ही है, कोई बात नहीं। नशे की स्थिति में ये नशे वाले जितने भी हैं जो इस गीत को गाते हैं कि मेल कराती है मधुशाला, वो इसी में ही, वहां बुद्धि काम नहीं करती। जो ही बुद्धि ने काम छोड़ा तो फिर कौन हिंदू और कौन मुसलमान, सारे एक ही है। तो यहां जब तक बुद्धि रहेगी वह भिन्नता बनी रहेगी, और बिना किसी नशे के, बिना किसी उसके ध्यान की परम अवस्था में जब एकत्व को देखते, उस एक तत्व को देख को अनुभव करते हैं, उसको देखना, उसको पकड़ना, उसका अनुभव करना, ये सब शब्द गलत, क्योंकि वो जो कुछ भी है सबने कहा वो शब्दों से परे। तो ये शब्द केवल आपको वहां तक पहुंचाते हैं, कुछ उसके आसपास ले जाते हैं, लेकिन बात को ठीक से समझने के लिए तो वही समझेगा जो अपने जीवन को इन सिद्धांतों में लाकर थोड़ा प्रैक्टिकली जीवन को जीना शुरू करेगा। अर्थात प्रज्ञान, प्रज्ञान का मतलब पृथक, जहां पर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अलग न रहे, जहां इन तीनों का एकत्व हो जाता है उस स्थिति को प्रज्ञान कहते, जहां दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों का भेद न रहे, त्रिपुटी जहां पर समाप्त हो जाती है उस अवस्था का नाम प्रज्ञान है। देखो ज्ञान ये कोई भावात्मक ज्ञान नहीं है कि हम वैसी भावना बनाएं, ये असली है। भावात्मक ज्ञान क्या होता है? भावात्मक ज्ञान होता है कि हम पूजा करने बैठे, पूजा करते हैं तो उसी समय एक सुपारी ली और सुपारी पर एक बौली ऐसे धागा लपेट लिया, थाली में रखा, कहा ये गणेश जी है। अब वो सुपारी को गणेश मान लेना, ये भावात्मक ज्ञान, ये ना तो संज्ञान है, ना ज्ञान है, ना विज्ञान है। लेकिन क्योंकि उस पर वो बौली सी बांध के रख दिया, अब वही गणेश जी उसके सामने प्रणाम भी करेंगे, साष्टांग लेट के उसको नमस्कार भी करेंगे, उसके आगे पैसे भी चढ़ा देंगे, उसमें वो भी करेंगे और बाद में उसके उठा के पैसे समेत जेब में भी डाल लेंगे। लेकिन वो गणेश है, ये भावात्मक ज्ञान हुआ, वो सचमुच में का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही अध्यास ज्ञान है। अध्यास का तो बहुत वेदांत में आपने अध्यास अध्यास बहुत इन बातों को किया कि हम सामने वो रख के भगवान शंकर की, चाहे वो लिंग की पूजा करो, पिंडी की पूजा करो, ये शालग्राम जी है, ये भगवान शंकर है, ये वो है, इन सबको अध्यास ज्ञान बोल लेते। तो इस तरह से अध्यास ज्ञान भी है, संपत ज्ञान भी है, भावात्मक ज्ञान भी है, शास्त्रीय ज्ञान भी। शास्त्रीय का मतलब कि सुन सुना के, शास्त्र ने कहा है कि ऐसे करो। शास्त्र में ये बात आया कि साधक के लिए स्त्री अग्नि है। अब स्त्री अग्नि है ये शास्त्र का, अब बैठे बैठे आप हर स्त्री को सोचो कि ये जलती हुई आग आ रही है मेरी तरफ, तो ये कितना भी आप जोर लगाओ ये असलियत नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ये शास्त्र ने हमें ये भर दिया कि ये चलती फिरती आग है, वो चलता फिरता आग है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। साधना के क्षेत्र में इस तरह की बातें आती है, तो वो शास्त्रीय ज्ञान है, कोई बौद्धिक ज्ञान है, कोई भावात्मक ज्ञान है, कोई अध्यास ज्ञान है, कोई संपद ज्ञान है। इन सब ज्ञानों को छोड़कर जिसको यह प्रज्ञान कहा गया है, प्रज्ञान का मतलब ये है कि अलग कुछ नहीं, विरोध कहीं नहीं। जिसको जीवन में इतना सा भी कहीं विरोध नजर आ जाए तो वो सिद्धांत से बिछड़ गया, गलत हो गया। सिद्धांत ये है कि स्वाय ईश्वर के और कुछ नहीं, ये भक्ति मार्ग वाले भी कहेंगे, कर्म मार्ग वाले भी कहेंगे और ज्ञान मार्ग वाले भी कहेंगे, तंत्र मार्ग वाले भी कहेंगे कि स्वाय ईश्वर के और कुछ नहीं। तो जब ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं तो विरोध कहां होगा? या तो ईश्वर के अलावा कुछ और भी हो तो हम कहें कि इसमें तो ईश्वर है, इसमें वो विरोध वाला तत्व। जब सब में वही है, एक ही तत्व है, तो विरोध कहां? विरोध कहीं नजर नहीं आएगा। और देखो ये बात जब तक हमारे दैनिक जीवन से शुरू नहीं होगी इसका कहीं कोई अर्थ नहीं। अगर दैनिक जीवन में हमें विरोध नजर आता है, विरोध कहीं पर भी नहीं है लेकिन विविधता जरूर रहेगी। विविधता का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चावल अच्छे लगेंगे, किसी को परौठा अच्छा लगेगा, किसी को दूध अच्छा लगेगा, किसी को चने अच्छे लगेंगे, किसी को कुछ लगेगा। सिद्धांत ये है कि भूख सबको लगेगी, इसमें कोई इनकार नहीं, भूख में हम सब बराबर। भूखे का जो अनुभव है भूख का, वो हम सबका बराबर है। लेकिन जहां खाने की बात आएगी वहां हम सब अलग अलग, तो उसको अलग न मान के, विरोधी न मान के उसको विविध मान लो। ये विविधता है, इसी में जीवन का मजा है। हम ये कोशिश करते हैं कि नहीं सारे एक जैसे ही हो, कहते हैं जी घर में कोई ये खा रहा है, कोई वो मांग रहा है, कोई वो, अरे यही तो विविधता है, यही तो मजा है इसमें, और किस में आना। अगर घर में पांच आदमी रह रहे हो और एक ही चीज सबको अच्छी लगती है खाने में, एक ही वो है, तो वो दो दिन में सारे खत्म हो जाएंगे, दौड़ जाएंगे वहां से छोड़ के। या तो कोई दिमागी उनमें कमी है या कोई और बीमारी है, क्योंकि ये विभिन्नता ही तो उसमें कुछ है। कोई कुछ लेके आएगा, दूसरा उसको बाहर फेंकेगा, वो उसको खाएगा, वो उसको करेगा। तो इसको अगर आप विविधता में लोगे तो ये लीला बन जाएगी, जीवन आनंदमय बन जाएगा और भगवान की इस लीला के हम पात्र और सहायक बन जाएंगे। और अगर इसको विरोध लोगे कि मैंने ऐसे कहा था, इसने ऐसे कर दिया, तो फिर ये आप माया के क्षेत्र में आ गए। फिर भी भगवान वहां है, फिर भगवान खुश होते हैं कि इसको मैंने मूर्ख बना लिया, ये फंस गया मेरे चक्कर में और लगा हुआ है दुखी होने। मैंने तो इसे सुखी होने के लिए भेजा था कि खूब आनंद ले, लेकर ये आ गया मेरे चक्कर। तो इस तरह से उसमें भगवान को वो होगा। और अगर आप भगवान की बात को मानकर ऐसे चलते हो तो भगवान के साथ साथ आप भी सुखी होंगे, आप भी खुश होंगे, अकेला वो ही नहीं होगा। इसमें दोनों की प्रसन्नता है, भगवान भी समझ गए कि ये पहचान गया है मुझे, और फिर वो भी आपके साथ साथ ही जो ठीक है, जो ठीक होना चाहिए उसी में ही लगेगा। इसी को प्रज्ञान कहा गया। यहां पर प्रज्ञान का मतलब संसारिक चीजों के ज्ञान का मूल जो है, मूल का मतलब उद्देश्य पर नजर रहना। प्रज्ञान का मतलब है कि स्रोत पर नजर रहे, मूल पर नजर रहे, और फिर उसकी वैरायटी क्या है वो जो मर्जी बनती है। मूल पर नजर रहे का मतलब है कि हम खड़े हों स्वीट शॉप पर, मिठाई की दुकान पर खड़े हों, और उसमें शोरूम में पचासों तरह की मिठाइयां पड़ी हैं, रंग उनके रंग बिरंगे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिसकी नजर मिठास पर है कि हर एक में चीनी भरी हुई है, शुगर की ही मिठास है और किसी चीज की नहीं, बाकी वैरायटियां हैं। आदमी जो झगड़ता है, देखो होती चीनी ही है, ये हलवाई की कारागरी है कि वही चीनी वो 200 रुपए किलो, कहते हैं जी ये बादाम का पिस्ता की बर्फी है, और वही वो 50 रुपए किलो ये लड्डू है, दोनों में चीनी, क्योंकि अगर दोनों में से खांड को, चीनी को निकाल दो तो दोनों राख के बराबर है, चाहे वो 200 रुपए वाला आपको बतला रहा हो, चाहे वो 50 वाली बात कर रहा हो। तो जिसकी नजर मिठास पर है वो इन शोरूम के चक्कर में नहीं आएगा, वो तो एक चुटकी चीनी ही जुबान पर रख के खुश हो जाएगा, चल पड़ेगा आगे कि इसी में सेहत भी ठीक है और मीठा भी बढ़िया, बजाय इसके कि उसी मीठे को हम मैदे में मिला के उसमें मिला के फिर ले, क्योंकि मजा तो मीठे का ही है। वो अगर बीच में नहीं है तो कुछ भी कर लो, फिर कोई बात कोई उसका अर्थ ही नहीं है। तो जिसकी नजर मूल का मतलब है कि जो वो तत्व जिसकी वजह से वो हमें अच्छा लगता है, तो वो तो मिठास ही है, बाकी कोई दूसरी चीज नहीं है। तो प्रज्ञान का अर्थ अगर ठीक से हम समझ जाएं, तो प्रज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एक से दूसरी अलग हो, सबकी सब वस्तुएं, सब की सब चीजें, जितनी चीजों का भी आप नाम ले सकते हो, वो चार हो या अचार हो, जड़ हो या चेतन हो, वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड, कुछ भी जो कुछ है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक दूसरे से न जुड़ी हुई हो। और आधारभूत बात उसकी यही है, क्यों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ही तत्व की ये सब अभिव्यक्तियां, तत्व एक ही है, उसको ऊर्जा कहो, उसको आप ब्रह्म कह लो, उसको आप कोई भी नाम जो भी मर्जी दे लो। लेकिन एक बात यहां और ध्यान में रख ले इस उपनिषद की को करने से पूर्व, कि जब भी किसी चीज का आप नाम रखोगे, नाम रखते ही वो विकृत हो जाती है। एक शब्द है अस्तित्व, बहुत बार शास्त्रों में आता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी वाले। अस्तित्व तत्व को कहते हैं। जब भी आप अस्तित्व का कोई नाम रखोगे तो अस्तित्व वस्तु में बदल जाता है। ये सिद्धांत, और जो ही कोई अस्तित्व को वस्तु में बदल देगा वहां पर सारी परेशानियां शुरू हो जाती। वस्तु में जड़ता अधिक होती है, अस्तित्व का अंश कम। वैसे अस्तित्व का अंश उसमें पूरा है, लेकिन इंसान को ये वहम है कि इसमें जड़ता है, चेतनता में। आप थोड़ा इस बात को ऐसे समझे, आज विज्ञान के सभी लोग इस बात को मानते हैं, साइंटिस्ट इस बात को स्वीकार करते हैं, और ये एक प्रमाणिक तथ्य है कि प्रत्येक वस्तु, जो कुछ भी आप देख रहे हो, हर वस्तु में परिवर्तन और गति, ये दो चीजें हर वस्तु में, गति और परिवर्तन। आपको ये चीज, पत्थर भी, अगर आपने ये भी कई बार पढ़ा होगा कि पर्वत इतना इतना 100 साल बाद 1 इंच पर्वत ऊंचा हो रहा है, वो 100 साल बाद 1 इंच ऊंचा हो या वो 1000 साल बाद हो, बात यह है कि पर्वत में भी गति और परिवर्तन की ऊर्जा छुपी हो। एक कुर्सी है, ये मेज है, इसको आप रख दो यहां तो आप क्या सोच, इसको कुछ भी ना करो, ऐसा पड़ा रहे तो क्या ये 100 साल तक ऐसा ही रहेगा? ये 100 साल तक नहीं रहता। इसमें कहां से घुल लगेगा, कहां से ये अपने आप गिर जाएगा, क्यों ये अपने आप ऐसा हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर गति और परिवर्तन की ऊर्जा, इसके अपने अंदर कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो गति और परिवर्तन से रहत हो। हम भी उसी में एक, गति और परिवर्तन हम में भी हो रहा है, होता जा रहा है। जिनको हम जड़ समझते हैं उनमें गति और परिवर्तन की जो स्पीड है वो जरा थोड़ी कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जड़, मतलब उसमें गति नहीं है या उसमें चेतनता नहीं। तो ये सभी के सभी, कोई भी जब आप शास्त्र पढ़े या कुछ भी करें, गीता में भी भगवान कई बार इस बात को कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में और कुछ नहीं है, ये सब के सब ऐसे ही है जैसे बनी गनाए वो प्रोए हुए हैं एक हार में, जैसे ये कुर्सी, ये मेज, ये मैं, ये माइक, ये सब मोती है, इनके बीच में एक धागा है और वो धागा ही गति और परिवर्तन को कहते हैं, वो ऊर्जा है, वो शक्ति, उसी को ब्रह्म कहा गया है। भगवान कृष्ण गीता में उसको कहते हैं ये मैं। तो क्योंकि ये गति और परिवर्तन हर वस्तु का धर्म है, हर चीज का धर्म है ये गति और परिवर्तन, तो क्योंकि ये गति और परिवर्तन हर वस्तु का धर्म है, तो ये गति और परिवर्तन बाहर से नहीं आता है। अगर इस मेज में गति और परिवर्तन का सिद्धांत है और कभी भी इस मेज में परिवर्तन होना है तो वो कुछ बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। हम उसे कहते हैं कि भाई ये चीज इस पर गिर गई इसलिए ये टूट गया, वो हम कहते हैं। कार्य कारण भाव को हम बनाते हैं, वस्तुतः वो है नहीं। वो ना भी इस पर गिरती, एक कोई ना कोई बहाना तो हम बनाते ही ना कि ये इसलिए इसकी मौत हो गई क्योंकि इसको ये हो गया था। कोई बहाना बनाओ ना बनाओ, ये परिवर्तन और गति स्वभाव है हर वस्तु का, जो पैदा हुई है वो जाएगी ही, लेकिन वो तत्व से कहीं नहीं जाएगी। प्रज्ञान ये है कि तत्व से उस ऊर्जा के रूप में वो हमेशा, और उसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए एकत्व की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि संसार में विरोध कुछ नहीं। वही एक तत्व, वही एक शक्ति अपने को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते, तो इसलिए यहां पर विविधता तो है, पृथकता नहीं। डिस्टिंक्शन तो है, डिफरेंस नहीं। डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस, यही लीला है। कपड़े सभी सूत के धागे से ही बने हुए, धागे पर नजर रहेगी तो कपड़ा कपड़ा ही है, सभी कपड़ा सूत से बना है, कपास से ही बने, लेकिन कपड़े के डिजाइन पर नजर रहेगी तो सब कपड़े अलग अलग हैं। कपड़े का डिजाइन, कपड़े के उसके सिलने का ढंग, कपड़े पड़े हुए हो तो उनको आप ये कहोगे ये लेडीज सूट है, ये जेंट्स का है, ये बच्चों का है, ये उसका है, ये उसका है। तो ये जो बच्चों का है, ये लेडीज का है, ये जेंट्स का है, ये वो है, ये विरोध ही नहीं है, विभिन्नता है इसमें। लेकिन जब इस विभिन्नता को विरोध के रूप में प्रतिपादित किया जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हनुमान जी है और ये भगवान शंकर है, ये देवी माता है, ये दुर्गा माता है, ये गणपति जी है, ये विरोध के रूप में जब इनका हम वो कर देते हैं तो सिद्धांत से अलग हो जाते हैं। फिर हम ज्ञान या विज्ञान में तो रह जाते हैं, ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रज्ञान नहीं। और शांति सुख उपलब्धि तब तक नहीं है जब तक प्रज्ञान तक नहीं पहुंचते। ज्ञान तो बहुत है, ये जितनी भी आज आप देख रहे हो उपद्रव जितने भी हैं ये एडवांस्ड नॉलेज के ही है, ये ज्ञान के ही है। ज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब कोई कहीं भी बैठा बैठा बटन दबाओ कहीं के लोग तबाह हो जाएंगे। ये सब जो कुछ भी है ये ज्ञान के परिणाम स्वरूप है, प्रज्ञान के नहीं। तो प्रज्ञान आधारभूत एकता, प्रज्ञान ये बतला देता है कि कोई भी वस्तु कोई भी चीज किसी से अलग नहीं है, सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना जीवन जीते हैं कि कोई भी चीज इस जब इसमें आओगे तो यही बातें आगे आएगी कि जो भोगता है वही भोग्य भी है, जो खा रहा है वो जो जिसको खा रहा है वो भी वो है, ऐसी ऐसी बातें उपनिषदों में आए। तो वो बातें समझ में तभी आएगी जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो कुछ भी है सब कुछ इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इसलिए विरोध किसी से नहीं, सबसे स्नेह। ओम शांति।